सो हम श्रीमद् भागवतम तीसरा स्तन 16वां अध्याय के 8वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। नाहम तथाग्नि यजमान हविर्विताने षच्योतद्धृतम् अदन उद्मुखेन यत् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो मुखासं तुष्टस्य मय वहिते निज कर पापी। इसका अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णवों के मुखों में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं, अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं अन्न घी आदि अर्पित की जाती हैं। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र ये कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के द्वारा अद्वैत प्रभु के बर्ताव में अद्वैत प्रभु के व्यवहार में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट ना करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं। हरिदास ने अपने विनय शीलतावश ही अपने आप को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 100,000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्कृति की गई है कि हरे नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वलघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणपिता श्री शाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिनी गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भगवते वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। सो प्रसंग ये चल रहा है कि चार कुमार गए भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये प्रसंग भी कहाँ से आया कि दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने शरण ली जब, तो भू भुवा स्वाहा सारे लोगों में अंधकार छा गया, तो देवी देवता सब घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि इसका क्या कारण है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, काम ही नहीं हो पा रहा है ना। तो ब्रह्मा जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि ऐसा कैसे हो गया, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रकार से जो चार कुमार जो मेरे मानस पुत्र हैं वो भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोग गए थे, तो छह द्वार क्रॉस कर लिए उन्होंने, सातवें द्वार पर उनको जय विजय नामक द्वारपालों ने रोक लिया है ना। सो तो चार कुमारों ने बोला कि यहाँ पर तो भगवान का धाम है, यहाँ पर भगवान को किससे खतरा हो सकता है, तो द्वारपालों की क्या आवश्यकता है ना। सो द्वारपालों की आवश्यकता दो कारणों से, पहला कारण यह है कि भगवान के भक्त, भगवान के जो भक्त हैं वो अलग अलग भागों में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो अगर किसी भक्त की इच्छा है कि वो एक द्वारपाल के रूप में भगवान की सेवा करे तो भगवान उनको मौका देते हैं है ना। और दूसरा कारण यह है कि खतरा नहीं भी है तब भी जब कोई भगवान से मिलने भक्त आते हैं तो द्वारपालों का एक कर्तव्य ये भी है कि वो जाके अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि फलाना भक्त आपसे मिल रहा है, फलाना व्यक्ति आपसे मिल रहा है ना। हम चैतन्य चरितामृत में हम इसका उदाहरण देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जब बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी मिलने गए थे भगवान कृष्ण से, तो द्वारपालों ने जाकर बोला कि ब्रह्मा जी आपसे मिल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कौन से ब्रह्मा जी मिल रहे हैं है ना। तो फिर द्वारपालों ने वापस जाके उनसे स्पष्टीकरण लिया और फिर जाके बताया कि चार मुख वाले ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी को इससे बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। हाँ, तो द्वारपालों का एक कर्तव्य ये भी है कि कोई जाएगा तो अनाउंस करेंगे कि हाँ हे भगवान, हे कृष्णा, अमुक भक्त आपसे मिलने के लिए आए। सो जब उनको रोक लिया जय विजय ने, तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला यार तुमने कैसे रोक लिया, तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम जो सेवा कर रहे हो तुम उस सेवा के योग्य नहीं लग रहे हो, तुम्हारे मन में द्वेष है, तुम अभी भी द्वैत की दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हो, तो तुम जहाँ पर द्वैत है, जहाँ पर राग द्वेष है, वहीं पर चले जाओ नीचे। तो जब उन्होंने श्राप दिया तो एकदम भगवान लक्ष्मी जी समेत वहाँ पर आ गए, लक्ष्मी जी को लेकर वहाँ पर आ गए। सो भगवान ने दो चीज़ें बोली, भगवान ने पहली बात तो ये बोली कि आपने अच्छा किया, श्राप दिया, हाँ कोई गलती करे तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए है ना, अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो समाज में शिष्टाचार, डिसिप्लिन, शासन की स्थापना नहीं होगी, अनाचार में लोग लिप्त हो जाएंगे, है ना। सो जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, तो लड़ाई शोभा नहीं दे रही, नहीं लड़ना चाहिए, है ना। और स्पेशली तब जब सामने गुरु खड़े हैं, तो अगर हम लड़ेंगे तो लड़ने से, लड़ने का फल क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, है ना, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण ने उनको बोला कि लड़ने से अराजकता नहीं फैलेगी, नहीं लड़ने से अराजकता फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ये मान लेंगे कि देखो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, हाँ, भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र, इन सब के किसी ने अनाचार किया, किसी के सामने अनाचार हुआ, कुछ फल ही नहीं मिला उनको, तो इट मीन्स इट इज ओके, कर सकते हैं, है ना। जब उनको सजा नहीं मिली तो फिर हमें कौन सजा देगा, तो चलता है। तो कृष्ण का इस चीज से, इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज से सावधान करने के लिए कि कोई भी हो, कैसी भी उसकी स्थिति हो, गलत काम करेगा पनिशमेंट मिलेगी। तो कृष्ण ने उन चार कुमारों को बोला कि आपने अच्छा किया पनिशमेंट दे। और कृष्ण ने बोला कि कृष्ण ने फिर द्वारपालों को बोला कि घबराना मत, तुमने गलती की है लेकिन मेरे बिहाफ पे गलती किया है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, है ना, साधु रेव सा मंतव्य, है ना, अपि चेत सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग, साधु एव च मंतव्य सम्यक एव स्थित ही चा। कि अगर कोई, किसी ने गलती कर दी लेकिन अनन्य भाव से भगवान की, भगवान का भजन कर रहा है, है ना, अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है, तो उसको साधु मानना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल खराब हो गए, खत्म हो गया, फ्यूचर खत्म हो गया, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। योग क्षेमम वहामी, है ना, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहामी। कि तुम निरंतर मेरी सेवा में लगे हुए थे, कोई बात नहीं, गलती हो गई, फाइन, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। योग क्षेमम वहामी, नौवें अध्याय का 22वां श्लोक है, मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा तुम्हें। और कृष्ण ने चार कुमारों को बोला कि देखो जो भी इन्होंने गलती किया वो एक्चुअली में मेरी गलती है, जो सेवक करता है वो उसका दोष स्वामी को लगता है, है ना, तो प्लीज आप क्रोध मत रहो, खुश हो जाओ। लेकिन जो चार कुमार थे वो भगवान को देखते ही, भगवान का दर्शन करके पहले ही संतुष्ट हो चुके थे, है ना। फिर उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान की महिमा का गुणगान किया, बताया कि भगवान कितने सुंदर हैं, है ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। अब भगवान बता रहे हैं चीजों को, भगवान कह रहे हैं कि दूसरों की बात छोड़ो, अगर मेरी अपनी भुजा अगर मेरे भक्तों के प्रति अपराध करेगी उसको भी काट के फेंक दूंगा, है ना। सातवें श्लोक में बोल रहे हैं, छठे श्लोक में बोल रहे हैं कि अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं अपनी ही भुजा को काट कर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि आप इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। अगर भक्तों के प्रतिकूल लगेगा तो भगवान अपना हाथ काटने में भी संकोच नहीं करेंगे। इतने
महत्वपूर्ण है भक्त, है ना। इसलिए जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो ऐसा सोच के हम उल्टी सीधी बातें करें, है ना। अगर हम भक्तों का संग करते समय सदैव अगर सावधान नहीं रहेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, है ना। कई लोग होते हैं मजाक करते रहेंगे, है ना। भक्त मिलेंगे तो पुराने जान पहचाने जी हमारी, हाँ, तो मजाक करते रहेंगे, कभी कोई चुटकुला, कभी कुछ, कभी कुछ, तो वो अच्छी बात नहीं है, है ना। कई बार क्या होता है मजाक मजाक में कोई बात बुरी भी लग सकती है, है ना। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत सावधान रहना चाहिए, और अगर भक्तों का संग मिला ही है तो हमें उसको लाभ उठाना चाहिए और कृष्ण कथा करनी चाहिए बजाय कि इधर उधर की बात, ग्राम्य कथा करने की, है ना। तो फिर कृष्ण ने बताया कि जो लक्ष्मी मेरी, मेरे से आसक्त क्यों है, लक्ष्मी आखिर मेरी सेवा क्यों कर रही है। तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी मेरी सेवा कर रही है, मेरे चरणों की सेवा करती रहती है लक्ष्मी, क्योंकि भक्त मेरे चरणों से आसक्त है, है ना। और अगर हम लोग अपना भी उदाहरण देख लें, हमारे भगवान के चरणों से क्या आसक्ति थी या है, नहीं? लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी आसक्ति भगवान के चरणों के प्रति बनी है तो प्रभुपाद की कृपा से बनी है, नहीं? अगर प्रभुपाद हमें भगवान की महिमा के बारे में नहीं बताते, भगवान के चरणों का यश अगर प्रभुपाद नहीं बताते, तो क्या हम कभी भगवान के चरणों की ओर देखते भी? मैंने पहले तो नहीं देखा था, मुझे आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं पहले भी इस कौन से जुड़ने से पहले मैं मंदिरों में जाता था, वृंदावन भी मैं सैकड़ों बार गया इस कौन से जुड़ने से पहले। पैरों की तरफ तो हम ध्यान भी नहीं देते थे, है ना, मुख देखा चलो भैया, इधर उधर देखा बात खत्म, जाके टिक्की विक्की खाई, भल्ले खाए, गोलगप्पे खाए, चलो भैया दिल्ली जाने का टाइम हो गया, है ना। सो जब प्रभुपाद की शरण मिली तो पता चला कि भगवान के चरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और शिष्टाचार है भगवान के चरणों से भगवान का दर्शन करना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे तो भगवान के चरणों में भगवान के भक्तों के भी दर्शन होंगे। जितने भक्त हैं भगवान के चरणों की सेवा में लगे हैं, जितने भक्त हैं भगवान के चरण रज हैं वो भक्त। तो जब हम भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे तो हमें श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षट गोस्वामियों के सबके दर्शन हमें कहाँ होंगे? भगवान के चरणों में होंगे। इसलिए जब हम भगवान के चरण देखते हैं तो हम भगवान के सिर्फ चरण नहीं देखने चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी पूरी गुरु परंपरा, सारे वैष्णव भगवान के चरणों में विराजमान है, हमें उनको भी देखने का प्रयास करना चाहिए, हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए भगवान के चरणों के दर्शन करते समय, ताकि हम उनकी कृपा से भगवान के अंगों के और भगवान के मुख कमल का दर्शन कर सकें। ये सही तरीका है भगवान के, भगवान का दर्शन करने के लिए, है ना। सो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भक्त इतने महत्वपूर्ण है कि आप यज्ञ में आहुति डालो, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण को अगर भोजन करा दे तो मुझे यज्ञ में आहुति से जो संतोष मिलता है, मुझे ब्राह्मणों के मुख से उस भोजन का टेस्ट करने में ज्यादा सुख मिलता है, और ज्यादा सुख मिलता है मुझे, है ना। तो यहां पर प्रभुपाद हमें चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। तो प्रभुपाद ने हमें कई बार एक्चुअली बताया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, जज का बेटा जज नहीं होता, इसी प्रकार एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, है ना। तो प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने बोला देखो, अब हिंदुस्तान में कल्चर है, हिंदुस्तान में सभ्यता है, हिंदुस्तान में कैसा भी व्यक्ति हो उसको सम्मान दिया जाता है। ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो कैसी भी उसकी स्थिति है उसको पंडित जी कह के बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि प्रभुपाद ने बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक बार एक व्यक्ति था उसने जनेऊ डाला हुआ था, तो मतलब जनेऊ का मतलब ब्राह्मण कुल से था वो, और वो ठेला खींच रहा था। तो एक व्यक्ति सामने से आया, रास्ते में आ गया होगा, उन्होंने बोला पंडित जी देख के चलो, तो वो ठेले वाले को भी वो सम्मान दे रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन इससे उसको ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता है ना। प्रभुपाद ने कहा वो तो कल्चर है इंडिया का कि सम्मान देना है ना, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, है ना, अमानिना मान दे कीर्तनी सितारी, सबको सम्मान दो, खुद सम्मान मत लो। लेकिन हमें अगर कोई सम्मान दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा और उसको दूसरे लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया, तो उसको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं सम्मान का अधिकारी हूँ। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो बहुत ही निकृष्ट कार्य करते हैं, बहुत ही मतलब हल्का फुल्का सा काम करते हैं, कोई ठेला जैसे चला रहे हैं, कोई जूतों की दुकान में काम कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म है तो लोग उसको बुलाते हैं, वो श्राद्ध का खाना खाने चले जाते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। तो जो खाना खिला रहा है क्या उसको वो वांछित फल मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, है ना। और जो खा रहा है वो भी कृष्णा उसको बोलेंगे, इतना घमंड कैसे है तेरे अंदर, योग्यता है नहीं, घमंड आ गया तेरे में, तो कृष्णा उसकी और अधिक वंचना कर देंगे, है ना। इसलिए अपमान को एक बार सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, सम्मान को बहुत सावधानी से स्वीकार करना चाहिए। सम्मान स्वीकार करने में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि बेटर सेफ देन सॉरी, कि सुरक्षित रहो बजाय कि बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े, पहले सुरक्षित चलो। अपने आप को अगर नीच मानोगे, अपने आप को अगर सबसे गिरा हुआ मानोगे तो पतन नहीं होगा, लेकिन अगर ये सोच लिया कि मुझ में कुछ तो है, यह सोचते ही खेल खत्म हो जाएगा, पतन हो जाएगा, है ना। तो जब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से मैं ग्रहण करता हूं तो मुझे ज्यादा सुख मिलता है, एक्चुअली में कृष्णा अगर किसी में भक्ति भाव देख लेते हैं, अगर कोई अनन्य भाव से कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो कृष्ण घी से सिक्त व्यंजनों की भी परवाह नहीं करते, है ना। कृष्ण केले के छिलके भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विदुर के घर खा लिए केले के छिलके, उसमें कहाँ घी लगा हुआ था। हाँ, कृष्ण को उसमें और ज्यादा सुख का अनुभव होता है, है ना। जब सुदामा विप्र कृष्ण से मिलने गए द्वारका, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके से इस प्रसंग की व्याख्या करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य बिल्कुल अलग व्याख्या लेके आते हैं। सो जब वो गए मिलने के लिए, तो वो मिलने के लिए गए, क्यों मिलने के लिए गए? वो कृष्ण से कुछ मांगने के लिए, अपने लिए मांगने के लिए नहीं गए। वो गए, भागवतम में लिखा है कि अपनी जो धर्म पत्नी है, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, उस पर करुणा करने के लिए कृष्ण के पास गए। और उनके पास कुछ था नहीं, उन्होंने बोला कुछ जा रहा हूं तो कुछ तो लेके जाऊं, लक्ष्मीपति के पास जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला कुछ तो दो, होंठों को हाथ मत लगाओ, हाथ अभी दूषित हो गए आपके, है ना। सो उन्होंने कहा कुछ तो लेके जाऊं, पूरा घर छान लिया, उसकी पत्नी ने कुछ था ही नहीं घर में, तो आस पड़ोस में गई, कुछ मांग के लेके आए। अब जब मांग के लेके आए तो कुछ बासमती चावल तो मिलेंगे नहीं, है ना, चिड़वा मिला, दो तीन मुट्ठी वही पैक कर दिया, चलो जी। तो वो निकले वहां से और द्वारका के लिए चले, द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंच गए, कृष्ण ने पूछा कुछ लाए हो? ऐसा कौन पूछता है? हम मतलब बहुत ही लालची हैं, बहुत ही घिनौनी प्रवृत्ति है हमारी, लेकिन ऐसा तो हम भी नहीं पूछते। कोई मेहमान घर में आ जाए, पूछते हैं क्या? मन में चाहे विचार आ रहे हो, मैं कुछ लेके आया नहीं आया, समोसे कैंपा सब पिला दी, पता चले वेस्ट हो गया ज़रा, कुछ लाया नहीं लाया, देखते हैं भैया उसके झोली वोली कुछ है, उसमें कुछ फ्रूट हो, कुछ लिफाफा हो, कुछ बच्चों के लिए खिलौने हो, कुछ तो हो, लेकिन हम पूछते नहीं हैं, सोचते रहते हैं कब दिखाएगा, कब दिखाएगा, कब देगा भाई। लेकिन कृष्ण ने पूछ लिया, भाई कुछ लाए हो क्या? तो क्या ये लालच है? क्या ये घमंड है? क्या ये मजाक उड़ाना चाहते थे कृष्ण? नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्टो, कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं, कृष्ण को पता है क्या हो रहा है, और कृष्ण को पता है कि सुदामा ले तो आया, लक्ष्मीपति हैं, उसको वहीं पे भी पता था घर में, लेकिन यहां आकर ऐश्वर्य देख के और ज्यादा संकोच में आ गया, नहीं दे पाएगा, तो सामने से ही मांग लिया कृष्ण। ये कृष्ण का प्रेम है और कुछ नहीं है। तो सुदामा विप्र ने बहुत संकोच किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं सुदामा लड़खड़ा रहे थे बोलने में, ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि नहीं लाया, ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि लाया, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। तो कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया, और भगवत गीता का वो श्लोक दोहरा दिया कृष्ण ने, अचंभित हो गया मैं पढ़ के। आप सबको पढ़ना चाहिए दशम स्कंद के 81वां अध्याय। तो कृष्ण ने वो श्लोक दोहरा दिया, कौन सा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिचिति तद अहम भक्ति उपृतम अश्नामे प्रयतात्मना। भक्ति से दोगे कुछ भी खा लूंगा। और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता समझ में आ गया खा लिया, फल समझ में आ लिया आ गया खा लिया, जल समझ में आ गया ग्रहण कर लिया, पुष्प फूल तो सूंघते हैं, फूल का हार बना के गले में डालते हैं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अश्नामी, मैं खा लूंगा। तो बहुत हैरानी की बात है नहीं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्त के प्रेम को देख के कृष्ण विवन हो जाते हैं, विवन हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं रहता समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। इतने विवल हो जाते हैं कि फूल भी खा जाते हैं। ये कृष्ण का प्रेम है। और अगर भक्त की श्रद्धा, भक्त की भक्ति में अगर शुद्धता है, पूरी तरह समर्पित है, तो कई बार तो उल्टा हो जाता है। कई बार तो भक्त कहता है नहीं दूंगा, और कृष्ण कहते हैं कैसे नहीं देगा, छीन के खा लेगा, छीन के खा लेते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास सड़े हुए चावल धो के खा रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु गए, क्या खा रहे हो दिखाओ, क्या खा रहे हो दिखाओ, नहीं नहीं नहीं, छीन लिया। अब चैतन्य महाप्रभु से कौन लड़ सकता है, जबरन छीन लिया और वो सड़े हुए चावल खा गए और बोल रहे वाह मजा आ गया, मैंने इससे ज्यादा टेस्टी खाना आज तक नहीं खाया। कोला बेचा श्रीधर के घर चले गए चैतन्य महाप्रभु, उसका टूटे हुए लोटे में से, जिससे वो सारे अपने काम करता था, कुछ था ही नहीं उसके पास, उस लोटे से चैतन्य महाप्रभु ने पानी पिया और बोला मेरी प्यास बुझ गई। शुक्लांबर ब्रह्मचारी मधु करी करके खाता था, उसके झोले में से सूखा चिड़वा निकाल के चैतन्य महाप्रभु ने जबरन खा लिया, है ना। मुरारी गुप्त अपने घर में, चैतन्य महाप्रभु अपने रूम में, अब मुरारी गुप्त जोर जोर से फेंक रहा है चावल जमीन पर, खाओ खाओ खाओ, और चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया। अगले दिन पेट भी खराब हो गया उनका। तो सुदामा को बोला कृष्ण ने कि दिखाओ क्या लेके आए, मैं परवाह नहीं करता कि ऐश्वर्य पूर्ण है या नहीं है, मैं तो भक्ति को ग्रहण कर लेता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता चीज से, मुझे तो तुम्हारा भाव चाहिए बस। अचैतन्य और भगवान कृष्ण ने छीन लिया उनके हाथ से चिड़वे का जो पोटली थी, उसको खोला और कृष्ण ने एक मुट्ठी चिड़वे की खा ली, वाह मजा आ गया। दूसरा कौर खाने लगे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी देवी ने। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं हाथ क्यों पकड़ लिया, क्यों नहीं खाने दिया। तो उन्होंने दो रीजन बताए, तीन रीजन बताए एक्चुअली, तीन रीजन क्या बताए उन्होंने, बोला एक कोर खा लिया आपने तो अब मुझे इस पर अनुग्रह करना पड़ेगा, मैं ऋणी हो गई इसकी, सुदामा की, अगर आपने एक और कोर खा लिया तो मुझे तो गुलामी करनी पड़ेगी, फिर मुझे इसके घर में जाके इसकी दासी की तरह रहना पड़ेगा, रुक जाओ मत करो। और लक्ष्मी जी ने दूसरा रीजन क्या सोचा, उन्होंने बोला कि सब पूरा जो ये स्वादिष्ट व्यंजन है ये क्या सारा आप ही खा जाओगे, मैं और दूसरी रानियां हैं वो इससे वंचित कैसे रह जाएं, हमें भी तो लेना है। और तीसरा रीजन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनको भगवान के स्वास्थ्य की भी चिंता थी कि भगवान अगर सूखा चिड़वा खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, है ना। इसीलिए तो हम भगवान को सूखा सड़ा हुआ खाना नहीं खिलाते, चाहे कितनी भक्ति हो हम भगवान को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन देते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान चाहे हमारे हाथ से सूखा हुआ सड़ा हुआ खाना भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन भक्त भगवान को बढ़िया से बढ़िया चीज ऑफर करता है, अर्पण करता है। तो दोनों तरफ से प्रतिस्पर्धा चल रही है। भगवान भक्त की हर वस्तु, निकृष्ट वस्तु चाहे कुछ भी हो, भौतिक दृष्टि से कृष्ण सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन भक्त इस चीज का फायदा नहीं उठाता। भक्त भगवान को भगवान की अच्छे से अच्छी सेवा करने का प्रयास करते हैं। दोनों तरफ से प्रतिस्पर्धा चल रही है। अगर किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया, पूरा उसका जीवन के सारे पाप खत्म हो गए, तो फिर बार बार क्यों नाम लेते रहे निरंतर? भक्त बार बार इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए, भगवान को अच्छा लगेगा ये सोच के। हालांकि एक बार नाम ले लिया अब जरूरत नहीं रही, भौतिक जीवन खत्म हो गया, भगवत धाम जाना निश्चित है, लेकिन फिर भी जो भगवान के अनन्य भक्त हैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते, निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अपने लिए नहीं ले रहे भगवान का नाम, अब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं। वो नाम ले रहे हैं कि भगवान सुनेंगे तो उनको अच्छा लगे, है ना। ये कारण है कि हम लोगों को निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। और हमें ये चाहे पता भी चल गया कि भक्ति भाव होगा तो भगवान कैसी भी तरह से हम सेवा करेंगे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भक्ति भाव का मतलब है कि भक्त अपनी ओर से अच्छी तरह से सेवा करना चाहता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसके माध्यम से हम अच्छी से अच्छी तरह सेवा करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। जितना हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतना ही कृष्ण भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण हमारे सूखे चावल भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर है और नहीं दे रहे हैं वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। हमारे पास जो बेस्ट से बेस्ट वस्तु है हमें भगवान को ऑफर करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट वस्तु हमारे पास कौन सी है? सबसे बेस्ट वस्तु कौन सी है हमारे पास? हाँ, हमारा मन। सबसे बेस्ट वस्तु हमारे पास हमारा मन है। अगर हमने अपना मन भगवान को अर्पित कर दिया बस, फिर सारी चीजें स्वतः, अगर मन हमने भगवान के चरणों में निवेशित कर दिया, अपने आप मन हमें आइडियाज देगा, मन हमें तरह तरह के विकल्प बताएगा कि किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। फिर हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अभी हमारा मन क्योंकि भगवान में निवेशित नहीं किया, हमारा मन हमें भोग के आइडियाज फेंक रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने मन भगवान के चरणों में निवेशित कर दिया तो पहले बहुत प्रोटेस्ट करेगा, विद्रोह करेगा हमारा मन, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि कुछ विकल्प नहीं है, भैया ये मानने वाला नहीं है, तो फिर वो सेवा में लग जाएगा, है ना। जैसे कोई जंगली घोड़ा अगर आप कोई व्यक्ति लेके आए तो उसको पहले सधाने में बहुत टाइम लगता है ना, उसके ऊपर चढ़ो उठा के पटक देता है नीचे, है ना, और अगले खुरों से पिछले खुरों से उसको घायल करने का प्रयास करता है, इधर भागता है उधर भागता है। लेकिन अगर
जो घुड़ सवार है अगर लगा रहे उसको सधाने में, तो धीरे 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 घोड़ा उसके काबू में आ जाता है। और ये कहा भी जाता है कि जो घोड़ा जितना अड़िया लो उतना ही अच्छा सेवा भी करता है वो, नहीं उतनी अच्छी सेवा करता है वो। तो ये जो हमारा मन है बहुत ही अड़ियल घोड़ा है, लेकिन अगर हम बार 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 लगातार हम इसको सधाने का प्रयास करेंगे तो एक समय आएगा हम इसको साध लेंगे, इसको हम अपने नियंत्रण में कर लेंगे, भगवान के चरणों में लगा देंगे, तो फिर यही मन जो आज हमें कृष्ण से दूर लेके जा रहा है ये हमें कृष्ण के सेवा करने के और नए नए आइडियाज देगा। आइडियाज की कमी नहीं है इसके पास, अभी उल्टे आइडियाज पैक रहे फिर सही आइडियाज देगा, है ना। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी जब हम अनन्य भाव से कृष्ण की सेवा शुरू कर देंगे, कृष्ण इतना आपसे व्यवहार करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, आपकी हर बात का हर ऑफरिंग कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है ना। चैतन्य चरितामृत में तो बल्कि एक ऐसा उदाहरण आता है, बहुत ही आश्चर्यजनक उदाहरण है, कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, बहुत बच्चे थे, चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से, निमाई के नाम से फेमस थे, पंडित तो बाद में लगा है ना। सो उनके जो पिता थे वो कोई भी संत आएगा, साधु आएगा, उसको अपने घर में जगह देते थे, उसको अच्छी तरह से सेवा करते थे उसकी, है ना। तो एक ब्राह्मण आया, वो स्वपाकी ब्राह्मण था कि मैं तो अपने हाथ से बनाऊंगा जी, है ना, तो मुझे सामग्री दे दो। तो निमाई जो है उनके पिता कौन है, क्या नाम है, जगदीश मिश्रा, है ना। सो जगदीश मिश्रा ने उनको सामान दिया, कच्चा सामग्री दी, चलो आप खुद पका लो। उन्होंने पकाया और भगवान को, भगवान कृष्ण की जो फोटो या जो भी भगवान कृष्ण के समक्ष उन्होंने रखा और भोग लगाया उनको। जैसे मंत्र उच्चारण किया, निमाई आए और उठा के खा लिया। हाय हाय, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया, सारा खराब कर दिया भोग। तो जगदीश मिश्र ने बहुत डांटा निमाई को, और शची माता को भी डांटा, पकड़ के क्यों नहीं रखते इसको, दिन ब दिन शैतान होता जा रहा है। तो वो स्वपाकी ब्राह्मण ने कहा चलो जो हो गया हो गया, आज भगवान की इच्छा नहीं है, आज मैं भूखा ही रह लूंगा। नहीं नहीं, हमें पाप लगेगा, आप दोबारा से बताओ। तो उन्होंने दोबारा पकाया, फिर भगवान को भोग लगाया कृष्ण को, निमाई वापिस आ गए कहीं से घूमते फिरते छुप छुपा के, और जब भोग लग रहा था उठा के खा लिया। हाय हाय, ये क्या कर दिया तुमने, दोबारा से। अब जगदीश मिश्र को गुस्सा आ गया, अब उनका दिमाग खराब हो गया, ज्यादा गुस्सा आए तो क्या करते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, नहीं कमरे बंद कर दिया, चल भूखा प्यासा बैठा रहा, तब तेरे को बेटा नानी याद आएगी, कमरे में बंद कर दिया निमाई को, दोबारा प्लीज दोबारा बनाओ। तो बोला नहीं, अब तो चांस ही नहीं है बनाने के लिए। तो निमाई के पिता ने बहुत मिन्नत की, नहीं माने वो, लेकिन तभी वहां पर निमाई के बड़े भाई आ गए, उनका क्या नाम है, अरे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम नहीं पता आपको, हाँ विश्वंभर तो चैतन्य महाप्रभु का नाम है, विश्वंभर तो चैतन्य महाप्रभु का नाम है, हाँ पिटाई करनी पड़ेगी इसके लिए, वो तो है ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का क्या नाम है, विश्वरूप, नहीं विश्वरूप याद रखना चाहिए हमें,
ठीक है ना। तो विश्वरूप आ गए। विश्वरूप कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु है, बलराम जी हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के विश्वरूप ने एक बार रिक्वेस्ट किया ब्राह्मण को, आप प्लीज हमें अच्छा लगेगा अगर आप बनाएं। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है बना लेता हूँ। आधी रात का समय हो गया था, टाइम लगता है ना बनाने में, आधी रात का समय हो गया। उन्होंने बनाया, कृष्ण ने योग माया फैला दी, जैसे कंस के कारागार में फैलाई थी वैसे ही निमाई पंडित ने योग माया फैला दी। सारे सो गए, सिर्फ एक ब्राह्मण जाग रहा था और एक निमाई जाग रहे थे। कंस के कारागार भी खुल गए और निमाई पंडित के जो बाहर से चिटकनी लगी थी, सांकर लगी थी, वो भी खुल गई। जब वो भोग लगा रहा था ब्राह्मण, निमाई पंडित आए और दोबारा से खा लिया। हाय हाय, तीसरी बार हद हो गई, तो क्या कर रहे हो तुम? तो निमाई ने बोला भैया मैं क्या करूं, तू खुद बुलाता है मेरे को और फिर कहता है ये क्या कर दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? तो भगवान ने अपना कृष्ण रूप उनको दिखाया, उनके चरणों में गिर पड़े और भगवान का जो जूठन है वो बहुत ही रोते हुए भगवान की जूठन उन्होंने ग्रहण की। तो निमाई ने बोला देखो किसी को बताना मत प्लीज, अपने तक सीमित रखना। तो उस पंडित ने बोला, ब्राह्मण ने, कि फिर आप भी एक वचन दो मेरे को। बोलो, बोला मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कहूंगा। वो जो ब्राह्मण है वो वहीं पर रहा नवदीप में और निरंतर जो है चैतन्य महाप्रभु अपने इष्ट के निरंतर दर्शन करता रहा, है ना। तो अगर भक्ति में दम होगा, अगर शुद्धता होगी, तो कृष्ण जबरदस्ती आके ग्रहण कर लेंगे, है ना। अगर कमी भगवान कृष्ण में नहीं है, कमी हमारे भाव में है, हमारी अपनी भक्ति के अंदर है। हमें अगर कुछ सुधारना है, हमने कृष्ण को नहीं सुधारना, हमने अपनी भक्ति के ऊपर काम करना है, हमने अपनी भक्ति को और गाढ़ा बनाना है ताकि कृष्ण आए और हमारे जो हम भक्ति से हम भगवान को ऑफरिंग करें, चाहे हमारा मन है, चाहे हमारा जप है, चाहे प्रसाद है, उसको भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्ण।